malayalam effort.
श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
मुझे दर्श दिखाओ भगवान, मुझे दर्श दिखाओ भगवान, हे साईनाथ भगवान, हे साईनाथ भगवान, मुझे दर्श दिखाओ भगवान। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी,
अमृतवाणी,
तुम
जय श्री साईराम। बहुत पहले की बात है, एक डाकू था, वन में जाकर आते जाते मुसाफिरों को लूटा करता था। जैसा ही मौका मिलता, जैसे ही सामने से कोई मुसाफिर गुजर रहा होता, झपट के सामने आ जाता, डरा धमका कर उनकी धन संपत्ति लूट लेता था। यूं कहिए कि उसकी रोजी रोटी यही थी, उसका जीने का तरीका यही था। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी मुनि वहां से गुजर रहे थे। ये डाकू छिपके कहीं खड़ा था। इन्होंने देखा कि सामने से एक ऋषि साधु के वेशभूषा में, उन वस्त्रों में सामने से आ रहे हैं व्यक्ति। अचानक से झपट के सामने खड़े हो गए, हाथ में कुल्हाड़ी लेके बोले, हे ऋषि, जो भी तुम्हारे पास धन संपत्ति है मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें मार लूंगा। कहते हैं नारद जी ने बड़ी प्रेम पूर्वक दृष्टि से एक बार डाकू को देखा, मुस्कुराए, बोले, बच्चे, तुम ऐसे दुष्कर्म क्यों करते हो? डाकू बोला, महाराज, ये मेरी जीविका है, मुझे भी अपना घर बार चलाना है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं। डाकू बोले, एक बात बताओ, मैं तो तुम्हें अपनी संपत्ति दे दूंगा, जो भी मेरे पास थोड़े कुछ है, लेकिन क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को लूट रहे हो। शास्त्र इसको पाप बोलता है, दिस इज अ सिन, और पाप का जो फल मिलेगा तुम्हें भोगना पड़ेगा। डाकू ने कभी ऐसी बातें पहले सुनी नहीं थी। कहते हैं नारद मुनि ने उन्हें बातें समझाई, किस प्रकार से कर्मों का फल लौट के आता है। बोले, बेटा, तुम ये क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? डाकू ने बताया कि मेरा परिवार है, उनके लिए कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो दुष्ट कर्म है, जो पाप कर्म है, क्या तुम्हारी पत्नी इसके भागीदार बनेगी? क्या तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा, उसमें सहायक होंगे? या तुम्हारे माता पिता, जिनके लिए तुम लूटपाट कर रहे हो, क्या वह तुम्हारे कर्मों में भागीदार बनेंगे? क्या तुम्हारे कर्मों के फल को वह भी भोगेंगे? डॉक्टर बोला, क्यों नहीं? साधु महाराज जी बोले, बेटा, ऐसे करो, मुझे शंका है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कर्मों के फल को भोगेंगे, जाओ पता करके आओ। डॉक्टर बोलते हैं, मुझे बेवकूफ समझते हैं आप, मैं घर जाऊंगा, पीछे से आप भाग जाएंगे। नारद जी ने स्वयं सुझाव दिया, ऐसे करो बेटा, तुम मेरे को पेड़ के साथ बांध जाओ, पूछ के आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहते हैं उस डाकू ने नारद मुनि को जकड़ के पेड़ के साथ बांध दिया और लौट के अपने घर में गया, अपने माता पिता के पास। बोले, देखो, मेरा कर्तव्य है, मैं माता पिता की रक्षा करूं, उनका पालन पोषण करूं, लेकिन जीविका चलाने के लिए मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं। जब मुझे इन कर्मों का फल मिलेगा, क्या आप इसमें भागी बनेंगे? कहते हैं माता पिता ने साफ मना कर दिया। डाकू थोड़ा चौंका, अपनी पत्नी के पास गया, बोला, प्रिये, तुम तो जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूं, किसके लिए? तुम्हारे लिए। ठीक है, मेरा काम चोर बाजारी का है, चोरी करता हूं, डाका डालता, माफ कीजिएगा। जब मुझे इन कर्मों का फल मिलेगा, क्या तुम उसमें भागी बनोगी? पत्नी ने साफ मना कर दिया, नो वे, तुम्हारे कर्मों के फल में मैं क्यों भागी बनूंगी, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है अपने परिवार का लालन पालन करना, उनका पालन पोषण करना, लेकिन तुम्हारे कर्मों के फल जब मिलेंगे तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। कहते हैं डाकू ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी उसी प्रकार से साफ मना कर दिया। डाकू का नाम तो रत्नाकर। आंखें खुल गई, एक पल चुपचाप बैठ गया, सोच में पड़ गया, अचंभा हुआ, विचार करने लग गया, दिमाग घूम गया। अरे सुबह से शाम मैं मेहनत करता हूं और मेरे परिवार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे कर्मों के फल को सहने के लिए तैयार हो। कहते हैं उल्टे पांव दौड़ता हुआ वन की ओर गया, जाकर नारद मुनि के चरणों पर गिर पड़ा, क्षमा याचना की, माफी मांगी, रोने लग लिया, अपने सर को पटक पटक कर पीटने लग गया। बोले महाराज मैं इतने दिनों से गलत काम करता जा रहा था, मुझे तनिक भी रति भर भी ये खबर नहीं थी कि मेरे कर्मों के फल में कोई भागीदार नहीं बनेगा। महाराज आपने मुझे प्रकाश दिखा दिया, आप मुझे अंधकार से प्रकाश क्यों लेके आ गए। भाइयों बहनों यह याद कीजिएगा हमारे शास्त्रों की, हमारे वेदों की एक प्रार्थना, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर मां अमृतम गमया। मुझे असत्य से सत्य क्यों ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हर व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए सच्चे मन से। नारद जी उसे बोले, पुत्र अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, अपने जीवन को दिशा दो, गिव डायरेक्शन टू योर लाइफ, अपने मन को दिशा दो, अपने विचारों को एक लक्ष्य दो, तुम इस संसार में क्यों आए हो, व्हाई हैव यू कम, कहां से आए हो, फ्रॉम वे हैव यू कम, कहां जा रहे हो, Where are you going? तुम यहां कब तक रहोगे? How long would you be here? जब अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर पूछोगे कदाचित तुम्हें मिल जाएं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मन वासनाओं में भरा हुआ है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन के साथ लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, बंधे हुए हैं, और जब तक मन के अंदर पवित्रता नहीं आएगी शायद तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर भी ना मिल पाए। रत्नाकर बोला, नहीं अब मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दीजिएगा महाराज, मैं अपने आप को आपके चरणों पर संपूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। ओ लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ इन टोटैलिटी एट योर लोटस फीट। शब्दों पे गौर कीजिएगा, महाराज मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से आपके कमल चरणों पर समर्पित करता हूं। ये एक बहुत बड़ी प्रार्थना है, एक बहुत बड़ा बदलाव है इंसान के अंदर कि इंसान एक बार परमात्मा से ये बोल दे, अपने हृदय से चित्कार के बोल दे कि मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। अब जो है तो तू है, पर्वत की चोटी पे तू ही तू, गंगा की लहरों में तू ही तू, पवन की तरंगों में तू ही तू, फूलों की खुशबू में तू ही तू, हर रंग में हर सूर्य की किरण में तू ही तू, हर सांस में मेरे परमात्मा मेरे आराध्य देव भगवान बाबा तू ही तू, हर जगह तू नजर आने लग जाए, हर जगह ईश्वर नजर आने लग जाए, ये प्रार्थना आपको वहां लेके जाएगी। महाराज अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मुझे रास्ता दिखलाइए। कहते हैं नारायण मुनि कोई कार्य से तो आए ही थे, निश्चित है। बोले देखो बेटा, पहले मन को पवित्र करना है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को तुम बारंबार 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 बोलते रहना। महाराज मैं मंत्र को बोलूंगा, मंत्र बताइए। नारद मुनि जी बोले मंत्र है, दो अक्षर का मंत्र है, राम 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 राम। कहते हैं वो डाकू रत्नाकर पढ़ा लिखा तो था नहीं, कभी उसने जीवन में मंत्रों का तो अध्ययन नहीं किया था, कभी पढ़ा नहीं था, कभी बोले नहीं थे, कभी उच्चारण नहीं किया, एक दो अक्षर का मंत्र राम भी नहीं बोल पा रहा था, पूरा जीवन मार काट करता रहा, राम को भी उल्टा बोलने लग गया, मरा। यूं भी कहा जाता है कि नारद मुनि जी बोले मरा ही बोल दे बेटा, ध्यान दीजिएगा, मरा 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 राम 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 राम। अगर मरा शब्द को बारंबार बोला जाए, मरा मरा राम 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 राम, बन जाता है राम। चाहे उल्टा बोल रहे हैं लेकिन बारंबार बोलने से वह मंत्र भी एक सही बन गया राम। कहते हैं नारद मुनि जी वहां से चले गए, रत्नाकर वहीं पर बैठ गया आंखों को बंद करके और राम राम का उच्चारण हो रहा था। एक दिन गुजर गया, दो दिन गुजर गए, बहुत अरसा गुजर गया, डाकू रत्नाकर के शरीर पर दीमक लग गई। अब जानते हैं दीमक जब लकड़ी पर लग जाए, लकड़ी को काट देती है, खाक कर देती है, कुरेद कुरेद कर, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मिट्टी से लगते हैं। इस दीमक को संस्कृत भाषा में बाल्मिक बोलते हैं। काफी समय के बाद नारद मुनि जी एक बार फिर से उस वन से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सामने एक छोटा सा मिट्टी का पहाड़ सा बना हुआ है, लेकिन पहाड़ में से एक ऊर्जा निकल रही है, एक एनर्जी निकल रही है, एक वाइब्रेशन आ रही है। दिव्य दृष्टि के द्वारा जान गए इस पहाड़ के अंदर, वो पहाड़ तो दीमक थी, इसके अंदर बैठा है रत्नाकर जो राम नाम को जप रहा है मन ही मन में। नारद मुनि ने दीमक को तोड़ा, उसमें से निकले भार रत्नाकर, उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि करता दीमक, जो दीमक से निकला हो वाल्मीकि। अब वह डाकू नहीं है, अब वह चोर नहीं है, क्योंकि उनका मन पवित्र हो चुका है, मन की शुद्धि हो चुकी है. माइंड हैज बीन प्यूरिफाइड बाय रिपीटिंग द नेम राम राम राम. मेरे अराधे देव भगवान बाबा ने कहा, राम का अर्थ है रा और मां, रा का अर्थ है अग्नि. अग्नि क्या करती है? जलाती है. अग्नि का गुण क्या है? जलाना. अग्नि आपके भीतर बसे हुए जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश करेगी, उसको भस्म करेगी. जब पाप जल के राख हो जाएंगे तब आएगा माँ. माँ का अर्थ है अमृत. परमात्मा का नाम, परमात्मा का अमृत आपके मन में, आपके बुद्धि में, आपकी आत्मा में समा जाएगा. विचार कीजिएगा, वाल्मीकि को कहा गया आदि कवि. आदि का कवि का अर्थ है फर्स्ट पॉइंट. जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख डाली, शायद आप जानते होंगे माता सीता उन्हीं के आश्रम में अंत में गई थी. वाल्मीकि एक साधु बन गए, एक ऋषि बन गए, और इस बात को भी सदियां बीत चुकी हैं, हजारों सैकड़ों वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है. वाल्मीकि ही बिकेम क्वालिफाइड टू राइट रामायण. शब्दों पे गौर कीजिएगा, He became qualified to recite Ramayana, to write Ramayana, to foresee Ramayana, to understand Ramayana. एक दृष्टि पड़ी नारद मुनि की, एक साधु की दृष्टि पड़ी डाकू के ऊपर, वो डाकू एक साधु बन गया जिसने रामायण लिख डाली. क्या आप ये नहीं सोचते आप कितने भाग्यशाली हैं? आपके सामने मेरे अवतार भगवान बाबा सव्य मानव के रूप में अवतरित हुए, मनुष्य का चोला पहन के आपके सामने खड़े हुए, उन्होंने ना जाने कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाली, कितनों को छुआ, कितनों से वार्तालाप किया. तो क्या उनका जीवन परिवर्तित नहीं होना चाहिए? जब भगवान स्वयं अपनी दृष्टि डाल रहे हों तो जीवन में परिवर्तन नहीं आना चाहिए? पूछिएगा अपने आप से, पूछिएगा अपने आप से, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया आराध्य देव के दर्शन करने के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग द दर्शन ऑफ लॉर्ड नारायण इन द रूप ऑफ लॉर्ड साईं, इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड साईं, फिर भी हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. विचार कीजिएगा, जब नवरात्रि पास में आती है ना, जब रामनवमी आने वाली होती है, घर घर में लोग रामायण पढ़ने लग जाते हैं. भगवान बाबा ने कहा कि रामायण इज फॉर ऑल एजेस. ये नहीं कि सतयुग के लिए है, त्रेता युग के लिए है, द्वापर के लिए, कलयुग के लिए, फॉर ऑल एजेस. रामायण इज फॉर ऑल कल्चर, फॉर ऑल रिलीजन्स, फॉर ऑल कंट्रीज, फॉर एवरी ह्यूमन बींग. रामायण सभी के लिए है, सभी युगों के लिए है, सभी देशों के लिए है, सभी संस्कृतियों के लिए है, प्रत्येक मानव के लिए रामायण है. कि रामायण हमको सिखला रही है कि हमें जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, हाउ शुड वी लिव लाइफ. वो तभी आ सकता है जब हम रामायण का अध्ययन करें, रामायण को समझें, हालांकि हम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन जब तक उसको पढ़ने के बावजूद बनने के पश्चात अपने जीवन में परिवर्तनशील ना लेके आए, तब तक रामायण हमारे लिए पुस्तक ही रह जाएगी। पुस्तक को मस्तक में लाके पुस्तक की गंध को अपने संस्कारों में उतारना होगा। विचार कीजिएगा, उसके बाद उसी रामायण को संत तुलसीदास जी ने भी रचित किया, कहा गया रामचरितमानस। जिसमें राम के चरित्र की व्याख्या है, इट डिस्क्राइब्स, इट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड रामा। रामायण भगवान राम के रावण पे विजय पे नहीं लिखी गई है, दैट माइट बी द आउटकम। रामायण इसलिए नहीं लिखी गई है कि रावण सीता को उठा के ले गया, राम ने जाके रावण को मारा और सीता को घर लेके आ गए, दैट्स इट। ना, रामायण हमें बता रही है राम का चरित्र किस प्रकार का हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। याद कीजिएगा भगवान बाबा के दिव्य शब्दों पे, एंड ऑफ द एडुकेशन इज कैरेक्टर। जहां हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा अध्ययन समाप्त होता हो, वो तब होता है जब हमारा चरित्र निर्मल बन जाए, जब हमारा चरित्र प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, जब हमारा चरित्र अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटीज को समझने लग जाए, एंड दैट इज रामायण। इसी को रामायण कहा गया। माता सीता जीवन में आएंगी, इसे कहा गया ब्रह्म ज्ञान। लक्ष्मण को कहा गया विवेक, हनुमान को कहा गया साहस, करज। जब तक आपका जीवन में करज नहीं हो, साहस नहीं हो, तो ब्रह्म ज्ञान को क्या प्राप्त करेंगे। स्पिरिचुअलिटी इज हैविंग द करेज एंड डिटर्मिनेशन टू फॉलो द इनर वॉइस एट ऑल टाइम्स। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि आपके अंदर इतना साहस हो, इतनी दृढ़ता हो, डिटर्मिनेशन हो कि आप अपने अंतर की वाणी को हर वक्त सुन के उस पर चल सकें। उसी को रामायण कहा गया, उसी को गीता कहा गया, उसी को सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का रस कहा गया, उनका सार कहा गया। और आज हम सभी रत्नाकर हैं, लूटपाट कर रहे हैं, शायद शरीर से ना कर रहे हों, मन से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं। जिस दिन मन में पवित्रता आ जाएगी, हम भी बन जाएंगे वाल्मीकि, आप भी बन जाएंगे वाल्मीकि, हम भी लिखेंगे रामायण, हम भी दर्शन करेंगे राधे देव भगवान राम के। जय श्री साई राम।
श्री रघुनंदन भव भय भंजन, श्री रघुनंदन भव भय भंजन, I'm